15 दिसंबर दिन शुक्रवार, सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन तलाक पर प्रस्तावित विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी।
वजह ढूंढना चाहिए कि किस वजह से तलाक दी गई। अगर उसका कारण औरत की गलती का है तो कोई बात नहीं, अगर शौहर तलाक दे रहा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि दूसरा आदमी उसका सबक सीख ले।
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में जमकर हंगामा और विवेचना में आज होगी बात शोमैन राज कपूर की।
अपने पे हंसकर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया। हिंदू न मुस्लिम, पूरब न पश्चिम, मजहब है अपना हंसना हंसाना।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
समाचार मानसी दास से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण बिल यानी तीन तलाक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। प्रस्तावित कानून एक बार में तीन तलाक देने यानी तलाक ए बिद्दत पर लागू होगा और यह पीड़िता को अपने तथा नाबालिग बच्चों के लिए गुजारा भत्ता की मांग करने की के लिए गुहार लगाने की इजाजत देगा। मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस ने एक ईसाई व्यक्ति को धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामले में पांच अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। मामला गुरुवार शाम का है जब ईसाइयों का एक दल सतना से लगे बाराकलां पंचायत में कैरोल सिंगिंग के लिए गया हुआ था। आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने इस दल पर गांव के लोगों के धर्मांतरण का आरोप लगाया। ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले फादर अनीश इमैनुएल ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि क्रिसमस के करीब कैरोल गाना आम बात है। जिम्बाब्वे के हरारे में सत्तारूढ़ जानू पीएफ पार्टी की एक अहम बैठक में इमरसन मननगावा को देश के नए राष्ट्रपति में चुने जाने के फैसले पर मुहर लगाई जाएगी। रॉबर्ट मुगाबे के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी की ये पहली बैठक है। मुगाबे ने 47 साल तक देश का नेतृत्व किया था जिसके बाद उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इमरसन मननगावा ने कहा कि उनकी पार्टी देश के गणतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करेगी।
डेमोक्रेसी फील्स दैट एज अ पॉलिटिकल पार्टी ZANU-PF मस्ट ऑलवेज कंपीट फॉर ऑफिस।
गणतंत्र का मतलब है एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर ZANU-PF पार्टी हमेशा सत्ता में आने के लिए अपने आप को विपक्षी दलों के समक्ष पेश करेगी। वो चुनाव में अन्य पार्टियों से प्रतियोगिता करेगी और विश्वसनीय, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावों के जरिए ही सत्ता में आएगी। इमरसन मननगावा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस की एक अदालत ने एक स्टिंग ऑपरेशन में मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी रहे और पूर्व वित्त मंत्री एलेक्सी उल्युकायेव को रिश्वत लेने के आरोप के एक मामले में दोषी पाया है। 61 साल के एलेक्सी को 8 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। बीते साल नवंबर में एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद साल 2016 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर सरकारी तेल कंपनी रूसनेफ्ट से $200 लाख लेने की कोशिश करने का आरोप था। ये मामला सरकारी तेल कंपनी के एक अन्य तेल कंपनी की खरीद से जुड़ा हुआ है। सोवियत संघ के विघटन के बाद से वे पहले मंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया था। मॉस्को की अदालत में सजा सुनाते हुए जज लरीसा सिम्योनोवा ने कहा, अदालत इस बात को मानती है कि उल्युकायेव एलेक्सी वेलेंटिनोविच अपने आधिकारिक पद पर रहते हुए रिश्वत देने वाले की तरफ से किसी निश्चित काम के बदले पैसे लेने के मामले में दोषी पाए गए हैं। रूसी जज लरीसा सम्योनोवा के शब्द। एलेक्सी उल्युकायेव ने उन पर लगे आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महासचिव और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को अयोग्य करार देने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। उन पर विदेश में मौजूद अपनी संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी नहीं देने का आरोप है। अदालत में उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जहांगीर तरीन को अयोग्य घोषित कर दिया है। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक सदस्य ने बीते साल इस संबंध में अदालत में याचिका दायर की थी। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दूसरी सभा दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल पर फेसबुक पर भी। आज आपके साथ मैं संदीप सोनी। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं भारत से। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने ट्रिपल तलाक पर प्रस्तावित विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। आज ही संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और ये विधेयक इस सत्र में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है। मसौदे को गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह ने तैयार किया। वहीं मुस्लिम संगठनों ने ट्रिपल तलाक जैसे मामलों में कानून बनाने की सरकार की कोशिशों की आलोचना की है। समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट सुनिए।
केंद्र सरकार ने द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट नाम से जिस विधेयक को आज मंजूरी दी है, यदि उसे संसद ने पारित कर दिया और वो कानून बन गया तो एक बार में 3 तलाक गैर जमानती अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। तलाक चाहे मौखिक दिया गया हो, चाहे लिखित दिया गया हो, या फिर SMS या ईमेल के जरिए, वो गैर कानूनी ही माना जाएगा। हालांकि ट्रिपल तलाक को खत्म करने की लड़ाई कुछ मुस्लिम महिलाएं ही लड़ रही थीं, लेकिन कई मुस्लिम संगठनों ने सरकार की इस कोशिश को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली कहते हैं,
क्या कॉन्स्टिट्यूशन हुकूमतों को इस बात का इख्तियार देती है कि वो मजहबी मामलात में कानून बनाए? ऑलरेडी ये मामला पब्लिक से मुसलमानों से तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इस वजह से हम समझते हैं कि ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है मजहबी मामलात में। इस वजह से हुकूमत को इस सिलसिले में कानून बनाने का इख्तियार नहीं होना चाहिए और न उसको इसमें कानून बनाने की कोई ज़रूरत है।
सरकार के इस कदम को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 दिसंबर को दिल्ली में एक बैठक बुलाई है, जिसमें बोर्ड तय करेगा कि इस विधेयक के मद्देनज़र क्या किया जा सकता है। करीब 4 महीने पहले 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया था और सरकार से इस पर कानून बनाने को कहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील और पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफर याब जिलानी कहते हैं,
उसका मिसयूज हो रहा था। हम मिसयूज रोकने के हम भी फेवर में हैं और हमने कोशिश भी की और इससे मजीद कोशिश करेंगे। शौहर या औरत चाहते हैं कि हम बिल्कुल सेपरेट हो, उनका सेपरेट होना ही दोनों के इंटरेस्ट में है। इमीडिएट सेपरेशन वहाँ के लिए लॉ मौजूद रहना चाहिए, ये हम लोगों का ख्याल था। और इसके जजमेंट में साफ लिखा है पार्लियामेंट को, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सोशल रिफॉर्म के नाम पे जो करती है वो इसको टच किए बगैर, फंडामेंटल राइट्स को टच किए बगैर वो उस पर गौर कर सकती है। तो इससे लगता यह है मेजॉरिटी का ये व्यू तो हमारा तो परफेक्ट है कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 में जो आते हैं उनको टच नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोई उसमें जेन्युइन रीज़न ना हो। तो ऐसा तो नहीं लगता मुझे कि इससे कोई दरवाज़ा खुल गया हो।
ट्रिपल तलाक को लेकर कुछ मुस्लिम महिलाएं लंबे समय से लड़ाई लड़ रही थीं और उन्हीं की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसला भी दिया था, लेकिन तमाम महिलाएं अभी भी ऐसी हैं जो कि इसमें कुछ खराबियों के बावजूद इसे मानव निर्मित कानून के दायरे में लाने के खिलाफ हैं।
वो जैसा भी है हमारे बुजुर्ग जो कह गए हैं, हमारे पैगंबर जो कह गए हैं, हम उसी पे एग्री हैं। कानून बनाया जाए मजबूत कि हाँ कुछ जो है मतलब वो औरतों के साथ कोई जाती ना हो, लेकिन जो हमारा पुराना चल रहा है उस पे कुछ नया किया जाए लेकिन उसे ख़त्म ना किया जाए। वजह ढूंढना चाहिए कि किस वजह पे तलाक दी गई। अगर उसका कारण औरत की गलती का है तो कोई बात नहीं, अगर शौहर तलाक दे रहा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि दूसरा आदमी उसका सबक सीख ले। हम खुदा और रसूल से बाहर नहीं जा सकते, हम उसी में रहेंगे जो हमको बताया गया है।
बहरहाल सरकार ने विधेयक का मसौदा भर तैयार किया है और उसे कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अभी वो संसद में पेश होगा और उस पर चर्चा होगी। जानकारों का कहना है कि ये मुद्दा कितना सामाजिक है, कितना धार्मिक है और कितना राजनीतिक, विधेयक पर चर्चा के दौरान ये सब साफ हो जाएगा। समीरात्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
जैसा कि आपने सुना, भारत में संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। ये सत्र 5 जनवरी तक चलेगा। आज सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
मुझे विश्वास है कि 2017 में प्रारंभ हो रहा ये विंटर सेशन जो 2018 तक चलेगा और कई महत्वपूर्ण सरकार के कामकाज भी जो दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले हैं उस सदन में आएंगे, अच्छी बहस हो, सकारात्मक बहस हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। इसके बाद संसद की कार्यवाही शुरू हुई लेकिन लोकसभा में आज कामकाज नहीं हुआ। लोकसभा के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देकर सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामा हुआ राज्यसभा में, जहां विपक्ष ने पहले ही दिन सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की।
एक आरोप लगा है भूतपूर्व प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर, आपको बहुत सारे फॉरेन सेक्रेटरीज, हाई कमिश्नर, एम्बेसडर्स, उन पर एक आरोप लगा है कि वो पाकिस्तान के साथ गुजरात के इलेक्शन।
सदन से बाहर निकलकर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद एक बार फिर हमलावर अंदाज में नजर आए।
माननीय प्रधानमंत्री जी को सदन में आना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए और सबूत देने चाहिए कि कहां, किस वक्त और कैसे उन्होंने ये षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा गया, और अगर सच है तो सजा होनी चाहिए, और अगर झूठ है सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए, गुजरात का इलेक्शन जीतने के लिए, वोटराइज इलेक्शन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो माननीय प्रधानमंत्री को न सिर्फ सदन से बल्कि पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।
राज्यसभा में इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के बागी नेता शरद यादव की सदस्यता खत्म करने का मुद्दा भी उठा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।
बीबीसी इंडिया बोल।
चुनाव आयोग की निष्पक्षता शक के घेरे में क्यों? गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल खड़े किए गए। हिमाचल और गुजरात के चुनाव साथ न करवाना, राहुल गांधी के इंटरव्यू पर रोक लगाना, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को नजरअंदाज करना। अपनी निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए क्या करे चुनाव आयोग? इस बार इंडिया बोल में इसी मुद्दे पर रखी अपनी राय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 16 दिसंबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने आज कहा कि अब वो रिटायर हो रही हैं। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि सोनिया गांधी ने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ा है, राजनीति नहीं। इस खबर पर और जानकारी के लिए मैंने बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद से बात की।
ये तो बिल्कुल सब पर आया है ये बात कि अब राहुल गांधी जो है अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और सोनिया गांधी बैक सीट ले लेंगे। जाहिर है वो अब उनकी उम्र भी नहीं रही, सेहत भी नहीं रही, लेकिन इतनी भी अब उम्र ऐसी भी नहीं होगी कि वो सियासत में सरगर्म ना रह सकें। पार्टी की अध्यक्ष नहीं रहेंगी, लेकिन राजनीति से शायद हटने का इरादा भी नहीं होगा, और वो उनको अगर मार्गदर्शन देना हो पार्टी को और अपने बेटे को जो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं तो उनकी ज़रूरत होगी। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनका अनुभव तकरीबन 20 साल का है पार्टी की अध्यक्ष की हैसियत से।
मैं इसी सवाल पर आ रहा था जुबैर साहब कि सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष वाले कार्यकाल को कैसे याद किया जाएगा, कैसे देखा जाएगा?
सबसे पहली बात यह है कि उनकी जो अध्यक्षता का जो काल है वो 20 साल का सबसे बड़ा है। सबसे पुरानी पार्टी की सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रही हैं तो सोनिया गांधी रही।
सोनिया गांधी के अलावा कोई नहीं हुआ जो कांग्रेस में इतने समय तक अध्यक्ष रहा?
इतने समय तक कोई भी अध्यक्ष नहीं रहा। इंदिरा गांधी रही काफी सालों तक, खुद उनके पति राजीव गांधी भी रहे हैं 6-7 साल तक, लेकिन इतने लंबे अरसे तक कोई भी अध्यक्ष नहीं रहा, वो भी भारतीय नहीं है। वो उसके बावजूद भी उनके इस पूरे 20 साल के अरसे को देखा जाए तो एक ऐसे समय में वो अध्यक्ष बनी 1998 में जब पार्टी लड़खड़ा रही थी। नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी जब पार्टी के अध्यक्ष बने, उससे पहले राजीव गांधी अध्यक्ष थे, तो पार्टी की अध्यक्षता जो है वो परिवार से निकल चुकी थी। सोनिया गांधी बिल्कुल बैक बर्नर में चली गई थी, उनकी बात पार्टी के अध्यक्ष अक्सर सुना नहीं करते थे, लेकिन पार्टी के अंदर परिवार का एक बड़ा दबदबा था उसके बाद बावजूद, और कई लोग चाहते थे कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बने, और आखिरकार उन्होंने 1998 में अध्यक्ष बनी वो। और उस वक्त पार्टी की हालत बहुत ख़राब थी, कई लोग बड़े बड़े लोग छोड़ के जा रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पार्टी को एक तरह से समेटा, मजबूत किया, और 2004 के चुनाव से पहले उन्होंने UPA भी बनाया और उसकी भी अध्यक्ष बनी। और इस तरह से जब ऐसा लग रहा था कि इंडिया शाइनिंग के नारे के तहत भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापस आएगी, लेकिन पार्टी की हार हुई और कांग्रेस सत्ता में आई और उसके बाद दोबारा एक 2009 में भी उन्होंने इलेक्शन पार्टी को जितवाया और यूपीए को जितवाया। तो ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाएगा जब 20 साल का अरसा जो उन्होंने गुजारा है पार्टी के अध्यक्ष की तरह से।
जुबैर साहब, सोनिया गांधी की खासियत आपने बता दी, लेकिन कहीं कोई खामी कमजोरी इस दौरान उभर कर आई हो जो ध्यान देने वाली हो?
मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद पर बिठाया और उनकी आलोचना हमेशा ये होती रही कि रिमोट कंट्रोल से वो खुद प्रधानमंत्री बने रहे, जबकि उनको प्रधानमंत्री का अवसर मिला था उन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये एक जो टू पावर सेंटर्स रहे पार्टी के अंदर और सरकार में, तो उसकी वजह से उनकी आलोचना काफ़ी हुई। दूसरी जो मैं कहूँगा उनकी जो कमी थी वो ये कि पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार जितना बढ़ा उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए, ख़ासतौर से यूपीए टू में जो हर दिन एक करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं और स्कैंडल बाहर आ रहा है उसको रोकने में वो कामयाब नहीं रही, बल्कि खुद उनके भी दामन पे कीचड़ उछाला गया, जो उनकी जो है एक तरह से कमियों में एक बड़ी कमी रही है।
ये थे बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद और अब बात विवेचना की। राज कपूर की गिनती उन फिल्मकारों में होती है जिन्होंने भारतीय सिनेमा को विश्व मानचित्र पर स्थापित किया। वो शायद भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत भी थे। रूस, चीन, ईरान, तुर्की, न जाने कितने देश हैं जहां राज कपूर आज भी बहुत बहुत लोकप्रिय हैं। राज कपूर की 93वीं जयंती पर उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प पहलुओं को याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
अपने पे हंसकर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया, हिंदू न मुस्लिम पूरब न पश्चिम, मजहब है अपना हंसना हंसाना। मैं यही चाहता हूँ किसी को अगर थोड़ी सी खुशी बांट पाऊँ तो मैं समझता हूँ एक कलाकार के नाते मैंने अपना ऋण चुका दिया।
ये आवाज़ है उस शख्स की जिसे भारतीय फिल्म इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा शोमैन कहा जाता है। राज कपूर बहुत से लोगों के लिए बहुत सी चीज थे, निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, संपादक, संगीतकार, कहानीकार, भारतीय फिल्म उद्योग की फर्स्ट फैमिली के कर्ता, प्रेमी, समाजवादी आइडियलिस्ट और न जाने क्या क्या। राज कपूर के बारे में एक कहानी कई बार सुनाई जाती है कि जब नेहरू रूस गए तो सरकारी भोज के दौरान नेहरू के बाद वहां के प्रधानमंत्री निकोलाई बोल्गनिन के बोलने की बारी आई तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ आवारा हूं गाकर उन्हें चकित कर दिया। 1996 में जब राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर और बेटी ऋतु नंदा चीन गए तो उन्हें देखते ही चीनी आवारा हूं गुनगुनाने लगे। उन्हें ये नहीं पता था कि वो कौन थे, लेकिन वो ये गीत गाकर राज कपूर और भारत का सम्मान कर रहे थे। कहा तो ये भी जाता है कि आवारा माओ से तुंग की पसंदीदा फिल्म थी। आखिर क्या वजह थी राज कपूर के रूस, चीन, तुर्की और अफ्रीका में इतने लोकप्रिय होने की? राज कपूर ने खुद एक बार बीबीसी को बताया था।
ये 1954 का किस्सा है जबकि पहली मर्तबा हम एक डेलीगेशन में रूस गए थे अपनी तस्वीरें लेके। मैंने हाल ही में एक तस्वीर बनाई थी आवारा जिसका नाम था। इस तस्वीर से वहाँ हमारा लोगों से परिचय हुआ। वो थोड़ा बहुत हिंदुस्तान को जानते थे, हिंदुस्तान के लोगों को जानते थे, लेकिन हिंदुस्तानी तस्वीरों के ज़रिए वो कुछ और करीब हिंदुस्तान के आए। तो तब वहाँ उन्होंने एक आवारा देखा। शक्ल सूरत उसकी कुछ राज कपूर जैसी थी, लेकिन दिल उसका आवाम का था, उस हिंदुस्तान के नौजवान का था जो आज तक उसी प्यार से धड़कता है। दरअसल उन्होंने राज कपूर को नहीं अपनाया, उस हिंदुस्तान के नौजवान को अपनाया था जिसका दिल बार बार यही कहता था, आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर अनजान नगर सुनसान डगर का प्यारा हूँ।
आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ।
राज कपूर की परवरिश और उन्हें राज कपूर बनाने में उनके पिता पृथ्वीराज कपूर का बहुत बड़ा हाथ। उन्होंने राज कपूर के कहने पर कि उन्हें फिल्मों में काम करना है, उन्हें 1 रुपए महीने की नौकरी दी थी और उनका काम था स्टूडियो में झाड़ू लगाना। राज कपूर की बेटी ऋतु नंदा बताती हैं।
मैं समझती हूँ कि मेरे दादा का पापा के नेचर पे और अपब्रिंगिंग में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। जब वो 2 साल के थे कहीं पिकनिक पे गए थे और वहाँ एक छोटा सा लेक था और पापा को स्विम करना नहीं आता था, पर दादाजी ने पापा को लेकर लेक में फेंक दिया। तो माँ रोने लगी, चिल्लाने लगी कि क्या कर रहे हैं आप, मेरा बच्चा तो डूब जाएगा एंड ऑल। तो दादाजी ने उन्हें पकड़ा, कहा रहने दो, तुम ठहरो, जब देखो तो सी ऐसे ही वो तैरने सीखेगा, जिंदगी ही ऐसी है, उसे अकेला छोड़ोगे तो अपने आप वो सर्वाइव करने सीखेगा। एक और भी इंसिडेंस है कि एक बार जब पापा थोड़े बड़े थे, स्कूल में जाते थे, बम्बई में बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, पापा पर ट्रैम से जाते थे स्कूल, पर जब इतनी बारिश हो रही थी तो उनने अपनी माँ को कहा कि माँ आज मुझे गाड़ी छोड़ दे। तो माँ ने कहा हाँ हाँ, पर ठहरो मैं अपने आपके पिताजी से पूछती हूँ। और जब वो दादाजी के पास गई तो दादाजी ने कहा नहीं, पापा सब दरवाजे के पीछे से सुन रहे थे। अब दादाजी ने कहा कि जिंदगी इसी एक्सपीरियंस की बनी होती है, वो जाएगा, भीगेगा, पानी में पडल्स होंगे, उसको हाथ पांव मारेगा और ट्रैम में जाएगा, लोग ऐसे, तो ये जो एक्सपीरियंस उसे मिलेगा वो ज़िंदगी भर उसे याद रहेगी और कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस वो इस्तेमाल करेगा। तो रहने दो, जाने दो। पापा ये सुन रहे थे तो वो आए सामने और बोला हाँ माँ, पापा ठीक कहते हैं, मैं ट्रैम से ही जाऊँगा।
मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी।
राज कपूर कभी बिस्तर पर नहीं सोते थे, हमेशा जमीन पर सोया करते थे। कपूर खानदान पर बहुचर्चित किताब द कपूर्स द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा लिखने वाली मधु जैन लिखती हैं।
राज कपूर जहां भी जाते थे वो होटल की पलंग का गद्दा खींचकर जमीन पर बिछा लेते थे। इसकी वजह से वो कई बार मुसीबतों में फंसे। लंदन के मशहूर हिल्टन होटल में जब उन्होंने ये हरकत की तो होटल के प्रबंधकों ने उन्हें चेताया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने दोबारा वही काम किया तो उन्होंने उन पर जुर्माना लगा दिया। वो 5 दिन उस होटल में रहे और उन्होंने खुशी खुशी रोज पलंग का गद्दा जमीन पर खींचने के लिए जुर्माना दिया।
राज कपूर अपनी फिल्मों में अक्सर वो सब कुछ दिखाते थे जिससे वो खुद गुजर चुके होते थे। राज कपूर अपने बारे में खुद कहा करते थे कि वो नग्नता के उपासक हैं। इसके लिए वो अक्सर उर्दू का एक शब्द इस्तेमाल करते थे, मुकद्दस उरिया, यानी पवित्र नग्नता। और इसका कारण वो बताते थे कि वो बचपन में अपनी माँ के साथ नहाया करते थे। उनकी बेटी रितु नंदा उनके बचपन का एक और किस्सा सुनाती है।
पापा जब आई थिंक 1.5-2 साल के होंगे तो एक जगह थी जहाँ पे रात को बैठकर लोग चने बेचते थे। तो एक दिन वो नीचे उतर के चना लेने कूद गए, वो पैसे वैसे तो थे नहीं, तो चने वाले को देखते रहे ना। तो उन्होंने एक शर्ट पहनी थी और नीचे कुछ नहीं पहना था, तो वो चने वाली ने उनसे मस्ती की और बोला अच्छा तुम अपनी शर्ट उठाओ और एक बोल बना, मैं तुम्हें चना देती हूँ। तो उन्होंने उसे चना दे दिया। और फिर बहुत साल बाद जब उन्हें समझ आई कि क्या हुआ, तो ये उनका तजुर्बा बन गया और उन्होंने इसको भी बॉबी में इस्तेमाल किया। बॉबी में एक सीन है कि लाइब्रेरी में डिम्पल बैठी है, पढ़ रही है और ऋषि जी उन्हें शीशा से डिस्टर्ब करते हैं और इवेंचुअली वो गुस्से होके बाहर आ जाती है। और जब बाहर आते हैं वो चलने लगते हैं, ऋषि कहता है कि चलो हम कॉफ़ी पीने जाती है, शी सेड नहीं हम चना खाने जाएंगे। तो चना बिकेम अ सॉर्ट ऑफ अ सेक्स सिंबल फॉर हिम।
कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए,
तेरे नैनों के फूल भुलैया में बॉबी खो जाए।
उनकी फिल्म बॉबी में एक सीन है जब ऋषि कपूर पहली बार डिंपल कपाड़िया से मिलने उनके घर जाते हैं। राज कपूर ने नरगिस के साथ हुई अपनी पहली मुलाकात को हूबहू सिनेमा के पर्दे पर उतार दिया था। मधु जैन लिखती है,
उन दिनों नरगिस बड़ी स्टार बन चुकी थी जबकि राज कपूर केदार शर्मा के असिस्टेंट मात्र थे। वो किसी काम से नरगिस की माँ जद्दन बाई से मिलने उनके मरीन ड्राइव वाले घर पर गए। जब राज कपूर ने घंटी बजाई तो नरगिस पकौड़े तल रही थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अनजाने में उनका बेसन से सना हाथ उनके बालों से छू गया। राज कपूर ने नरगिस की उस छवि को पूरी उम्र याद रखा और जब उन्होंने बॉबी बनाई तो उन्होंने ऋषि और डिंपल पर हूबहू वही सीन फिल्माया।
अक्सर कोई लड़की इस हाल में किसी लड़के से 16 साल में जो कहती है वो मुझे कहना है।
नरगिस के साथ राज कपूर का एक और किस्सा हुआ था जब एक निर्माता निर्देशक शाहिद लतीफ ने, जो उस समय इस्मत चुगताई के पति हुआ करते थे, नरगिस को प्रपोज कर दिया। मधु जैन लिखती हैं कि एक बार राज कपूर ने खुद बताया था,
हम दोनों एक पार्टी में जा रहे थे, हमें देर हो रही थी। जब मैं नरगिस के पास गया तो उनके हाथ में एक कागज था। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, उन्होंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, और ये कहते कहते उन्होंने वो कागज फाड़ डाला। जब हम दोनों कार के पास पहुंचे तो मैंने नरगिस से कहा कि मैं अपना रुमाल भूल आया हूं। मैं कमरे में वापस गया, तब तक नौकरानी कमरे में झाड़ू लगाकर कागज के टुकड़ों को वेस्ट पेपर बास्केट में डाल चुकी थी। अगले दिन मैंने बहुत जतन से उन कागज के टुकड़ों को जोड़ा और तब मुझे पता चला कि एक निर्माता ने चिट्ठी लिखकर नरगिस को प्रपोज किया है। मैंने इस पूरे दृश्य को हूबहू संगम फिल्म में फिल्माया।
ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, के तुम मेरी जिंदगी हो, के तुम मेरी बंदगी हो।
जब राज कपूर और नरगिस का ब्रेकअप हुआ तो राज ने उसे बहुत बुरी तरह से लिया। उनकी पत्नी कृष्णा कपूर ने बनी रेवन को बताया था कि कई रातों तक राज कपूर बहुत देर से घर लौटते थे। उन्होंने शराब पी रखी होती थी, वो अपने टब में लेटकर बुरी तरह से रोया करते थे। मुझे पता था कि वो नरगिस के लिए रो रहे हैं।
हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना।
1988 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब वो सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में पुरस्कार लेने पहुंचे तो अचानक उन्हें दमे का दौरा पड़ा। उस समय पत्रकार प्रदीप सरदाना वहां मौजूद थे।
मुझे याद है 2 मई 1988 की बात है, तो मैंने देखा कि राज कपूर जी ने किसी आदमी को बुलाया जो वहां के ड्यूटी पे थे, उनको कहा कि जरा एक मिनट आइए, और फिर वो उनको बाहर लेकर चले गए। करीब 8-10 मिनट बाद वो वापस आए तो बड़े कुछ हाँफते हुए आए। तभी मैंने देखा कृष्णा जी जो साथ में बैठी थी उनके साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर था, वो उन्होंने खोला और मास्क उनके मुंह पर लगाया, उनको ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी। तभी देखा थोड़ी देर में मंच से उनका नाम अनाउंस हो गया, घोषणा हुई उनके नाम की कि आए राज कपूर साहब और पुरस्कार लें अपना। तो राष्ट्रपति जी ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद वो नीचे आए स्टेज से और उन्होंने वहीं उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया। खैर उनको फिर कुछ लोग बाहर ले गए, मैं भी तुरंत वहाँ पहुँच गया, उनको पसीने आ रहे थे काफ़ी, मास्क इनको लगाया हुआ था वो। तो तभी जो राष्ट्रपति की जो डॉक्टर थी वो बाहर आ गई, तो उन्होंने उनको देखा तो वो उनको इंजेक्शन देने लगी। तो राज कपूर देखिए आप उस हालत में भी बड़े चेतन अवस्था में थे कि उन्होंने उनको कहा कि ये आप क्या दे रही हैं मुझे, उनका ये सर डेरी फैलिन का इंजेक्शन दे रही हूँ। कहते वो तो मैं भी 2 घंटे पहले होटल से लेकर चला हूँ, फिर ले सकते हैं? उन्होंने कहा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो स्ट्रेचर लेकर फिर अंदर आए तो राज कपूर बोले नहीं नहीं नहीं, मैं स्ट्रेचर पर लेट कर नहीं जा सकता। मैं था कोई बात नहीं, आप उसमें बैठ जाइए, हम आपको ऐसे ले सकते हैं। फिर उस पर बैठ गए, फिर हम उनको लेकर एम्बुलेंस तक गए, उसके बाद जाकर हम एम्स हॉस्पिटल पहुंचे।
एम्स में थोड़ी देर के लिए उनकी तबीयत सुधरी लेकिन फिर वो कोमा में चले गए और 1 महीने बाद 2 जून 1988 को राज कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
जब आईसीयू में एडमिट हो गए तो डॉक्टर पांडे ने मुझसे कहा प्लीज अब आप जाइए, आईसीयू में आप नहीं रुक सकते। मैं कहा ओके। वो राज कपूर ने जब सुना तो एकदम जोर से बोले नो 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 डॉक्टर नो प्लीज प्लीज, इनको मेरे साथ रहने दीजिए, इनको मत भेजिए प्लीज। फिर हम वहाँ रुक गए, फिर उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी तो फिर उनको लगा कि नहीं अब कुछ गड़बड़ है। फिर बोले मुझे आराम नहीं आ रहा, मुझे लगता मैं अब ठीक नहीं होऊंगा, लेट मी डाई। उनके ये वर्ड थे जो मुझे नहीं पता था ये वर्ड सचमुच उनके अंतिम शब्द बन जाएंगे। और फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उसके बाद फिर वो कोमा में चले गए। और उसके बाद वो पूरे 1 महीने पूरे वो 2 मई से 2 जून तक, अब मुझे याद है वक्त भी पूरा वही था, हम 2 मई को रात को 9 बजे करीब पहुंचे थे और 2 जून को ठीक 1 महीने बाद रात को 9 बजे ही उनका निधन हुआ।
एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तुझे के होठों को देकर अपने।
राज कपूर पर रेहान फजल की इस विवेचना के साथ ही संदीप सोनियो को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि।